समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास, जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत पर हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी हम याद करेंगे जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लवली निगम और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट अनुजा कुमार। अनुजा नमस्कार।
Hello, namaskar, and a very good afternoon, Lavleen. Lavleen, sad to hear about yet another incident of forest fire in Uttarakhand. One of the major reasons for a blaze to erupt in the jungle landscape today is a lack of moisture. The dry leaves, pine needles and other flammable materials present in the forest bed, they serve as fuel for the fires, and scanty winter rainfall and snow this year in Himalayas since September has also added up to provide fuel to this fire as mentioned by experts. Uttarakhand's forests are up in flames and it has been burning for 60 hours, leading to the deployment of Indian Air Force personnel, choppers, in an effort to quell the raging fire. The choppers are collecting water and jet spraying the affected areas to douse the fire in an operation termed Bambi Bucket. But then somewhere, human negligence also comes in. So we always need to be extra careful during these fire-prone months, which is from September till the June.
And बहुत संवेदनशील रहते हैं, बहुत जल्दी आग लग जाती है और फिर वो जाहिर तौर पे वातावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं.
Absolutely. So forest fires certainly cause great loss to the forest ecosystem, diversity of flora and fauna and economic wealth. Not only this, the polluted air full of smoke travel long distances and impact human health across a large area. The livelihoods of several indigenous communities in the region depend on forest, making it imperative for all of us to take care of them. So why not be more cautious as a responsible citizen, Lavleen? Isn't it?
बहुत जरूरी है, खासतौर से इस महीनों में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए.
Absolutely. So moving on, let's apprise all of you on the news making headlines at this hour.
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए जोर शोर से प्रचार जारी है. प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई.
कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे टू एड्रेस पब्लिक मीटिंग्स इन कर्नाटका.
उत्तराखंड में जंगल की आग पर काबू पाने के प्रयास जारी, घटना में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया.
8 पीपल किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट एट बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़.
और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स का सामना होगा कोलकाता नाइट राइडर्स से.
And lovely, now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about International Dance Day.
जी, हर साल दुनिया भर में 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है. वैश्विक स्तर पर मनाया जाने वाला यह दिवस नृत्य कला और उसके कलाकारों का सम्मान करने का एक विशेष मंच है, अवसर है. यह दिवस नृत्य कला के महत्व को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने, विभिन्न संस्कृतियों में नृत्य की भूमिका का जश्न मनाने, नृत्य कला के प्रति प्रशंसा व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है. इस दिन कई नृत्य संबंधित कार्यक्रम होते हैं जिनमें कलाकारों का प्रदर्शन, नृत्य संवाद और व्याख्यान शामिल होते हैं. इस दिन को विशेष रूप से नृत्य कला के महत्व को जागरूक करने और लोगों को नृत्य कला की महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है. इस दिन विभिन्न नृत्य संबंधित कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जो नृत्य कला को गौरवान्वित करते हैं. अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को मनाने से नृत्य कला के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती है और इसके साथ ही लोगों को नृत्य कला की ओर अग्रसर किया जा सकता है. और वैसे भी अनुजा, नृत्य से जो है हमारा एक शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, अंदर से भी बहुत अच्छा लगता है.
यस, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट लवलीन. इनफैक्ट इंटरनेशनल डांस डे, ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड डांस डे, इज अ वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन दैट पेज ट्रिब्यूट टू द art form of dance and promotes its various forms as a universal value. The day also aims to raise awareness about the inherent value of dance and empower the dance community to showcase their work to a wider audience. The idea of this day was conceived by the Dance Committee of the International Theatre Institute, which is an essential partner of UNESCO in the area of performing arts. Every year, the committee selects a renowned choreographer or dancer to deliver a special message to the global dance community, highlighting the significance of dance and its ability to connect to the people worldwide.
और अगर इसके हम नृत्य दिवस के इतिहास की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य के जादूगर जीन जॉर्जेस नोवेरे को समर्पित है। इस दिन के इतिहास में 29 अप्रैल 1982 से ये शुरू होता है। 1982 में यूनेस्को के इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी आईटीआई के अंतर्राष्ट्रीय नृत्य समिति ने नोवेरे के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस घोषित किया। फ्रांसीसी बैले मास्टर जीन जॉर्जेस नोवेरे को बैले के जनक के रूप में जाना जाता है। इस दिन के आयोजन से नृत्य कला को उच्च स्तर पर मान्यता मिली है और अब यह एक सार्वजनिक मंच बन चुका है। हर साल दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है यह दिन। नोवेरे ने न केवल एक महान नृतक थे बल्कि उन्होंने लेटर्स ऑन द डांस नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी जिसमें नृत्य कला से जुड़ी सभी चीजें मौजूद हैं।
राइट, सो सिंस देन, सिंस इट्स फाउंडेशन इन 1982, इट हैज इवॉल्वड इनटू अ worldwide celebrations, and with dance communities, schools, companies and organizations around the world hosting many events based on dance. These events usually involve performances, workshops, dance festivals, lectures and other activities that aim to promote awareness of dance as an art form and its cultural importance. Now, as you had mentioned, Lavleen, it has certainly has health benefits. And dancing can be a way to stay fit for people of all ages, all shapes and sizes. It has a wide range of physical and mental benefits, including like it improves condition of your heart and lungs. It increases muscular strength. It increases your stamina. It increases your aerobic fitness. And weight management can also be done. बहुत लोग जाते हैं जिम में एक्सरसाइज करने, but you can continue with your
डांस करेंगे
टैलेंट ऑफ डांस एंड बिकम अ फिट पर्सन ऑन योर ओन,
क्योंकि फैट तेजी से कम होने लगता है।
Absolutely. And of course, it increases your physical confidence. It also improves mental functioning and improves, it makes your social skills better developed also.
जी, आजकल तेजी से नृत्य जो है बहुत प्रसिद्ध होने लगा है या बहुत कहें पॉपुलर होने लगा है। अगर वजन कम करने के तमाम उपाय आजमाकर आप थक चुके हैं तो एक बार डांस करके जरूर ट्राई करें। आजकल जुम्बा, बैले, क्लासिकल, हिप हॉप, हर तरह के डांस से जो है मोटापा कम करने की बात कही जाती है। बॉडी की फ्लेक्सीबिलिटी बढ़ती है, हड्डियां मजबूत होती हैं, एनर्जेटिक हम फील करते हैं, थकान की समस्या भी दूर होती है। इसके साथ शरीर के साथ साथ हमारा ब्रेन भी एक्टिव और हेल्दी रहता है, याददाश्त दुरुस्त है। और कुछ स्टडीज में तो यह भी बताया गया है अनुजा कि डांस से डिमेंशिया के लक्षणों को कम किया जा सकता है।
नॉट ओनली दिस लवलीन, इनफैक्ट इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन इनकरेजिंग आवर हेरिटेज इन द डांस फॉर्म्स लाइक कथकली, लावणी, ओडिशी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन डांस स्टाइल्स एंड कथक, कथकली ऑल्सो इज देयर, भरतनाट्यम इज देयर, भांगड़ा इज देयर, सो ऑल दीज थिंग्स दे गिव सम rooted to our heritage also.
और अगर कैसे मनाया जाता है इस बारे में हम बात करें तो विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। कई स्कूल, कॉलेज, नृत्यशालाएं, संगठन नृत्य संबंधित कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विभिन्न स्थानों पर नृत्य प्रदर्शन, संवाद और नृत्य संबंधित व्याख्यान भी आयोजित किए जाते हैं। जी, और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जानने का अनुजा कि उनके पास क्या कुछ है। आज कहां से शुरुआत करें?
लेट्स गो फर्स्ट टू लद्दाख, वेयर एन एनुअल 6-डे प्रेयर फेस्टिवल ऑफ मंक्स एंड नन्स कमेंस टुडे एट द धर्मा सेंटर इन ले। द फेस्टिवल टेक्स प्लेस फ्रॉम द 4th टू द 11th ऑफ द 3rd मंथ इन द टिबेटन बुद्धिस्ट कैलेंडर।
Ladakh Molam Chanmo, also called the Great Prayer Festival, is a mass congregation of Sangha community members, including monks and nuns from different villages in Leh and Kargil. The festival began today and will conclude on May 4th. The 6-day-long prayer is organized by the Ladakh Gompa Association, which is an organization of 16 major monasteries in the Union Territory. As per the official statement, this year more than 3,000 monks and nuns from the country and abroad are likely to participate in the festival. This is the 30th edition of the annual prayers, which also marks the 75th anniversary of the Gompa Association. Heads of different monasteries, religious organizations and other eminent figures participated in the opening ceremony of the event. Talking to Akashwani, Vice President of Ladakh Buddhist Association, Sering Dorje, talked about different facets of the annual prayer.
मोलम छन्मो जो है एक्चुअली लासा में होता था सारे मॉन्स का बहुत बड़ा पूजा होता था उसी के तर्ज पर यहाँ लद्दाख में भी बहुत सालों से हम मोलम छन्मो मना रहे हैं तो इस साल क्योंकि इनका गोल्डन जुबली है तो इसलिए बहुत लास्ट के परेड मनाया जा रहा है बुद्धिज्म का मैसेज ही वर्ल्ड पीस के लिए होता है तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें जब पूजा होता है तो डेफिनेटली वर्ल्ड पीस के लिए पूजा की जाती है और ये भी प्रार्थना करते हैं कि लोग सुखी रहें
Monks and nuns perform prayers and rituals and devotees offer cakes adorned with elaborate butter sculptures. This festival holds immense importance among the followers of Buddhism. The festival aims to unite the monks and nuns from the entire region on a single platform and disseminate messages of peace and happiness throughout the country. For Parikrama, Muzaffarwani from Leh, Ladakh.
और अनुजा अप्रैल से लेकर जून तक बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू रहती हैं सभी माता पिता चाहते हैं कि इन छुट्टियों में बच्चे कुछ अच्छा सीखें इसी विचार से बच्चों को समर कैंप में भेजते हैं हफ्ते भर से लेकर 15 दिन तक चलने वाले हैं ये समर कैंप्स और बच्चों को तैराकी चित्रकारी खेलकूद के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया जाता है इन्हीं समर कैंप का चलन देखकर छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम ने अपने उर्दू तथा मराठी विद्यालयों में इस बार समर कैंप का आयोजन किया है क्या कुछ सिखाया जाएगा कैसे आयोजित किया गया है ये समर कैंप इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हर्षवर्धन
छत्रपति संभाजी नगर की नगर निगम द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में छात्रों की परीक्षाएं हो चुकी है स्कूल की छुट्टियां भी शुरू हो गई है लेकिन पिछले हफ्ते भर से इन सभी स्कूलों में सुबह से लेकर दोपहर बाद तक बच्चों की चहल पहल रहती है कारण इन दिनों इन सभी स्कूलों में समर कैंप चल रहा है ये बच्चे अपने ही स्कूल में तरह तरह की कलाएं और कई तरह के खेल सीख रहे हैं इस बारे में स्कूल के प्रधान अध्यापक संजीव सोनार ने अधिक जानकारी दी
स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल इस उद्देश्य से हमारे माननीय आयुक्त जी श्रीकांत सर उपायुक्त अंकुश पांडे सर इनकी कल्पनाओं से सभी स्कूलों में समर कैंप शुरू है समर कैंप के लिए संगीत टीचरों ने बच्चों को गीत गाने के लिए तो सिखाई है लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जैसे कि गिटार है सिंथेसाइजर है खुलक है तबला है कोंगू वोंगू है ये कैसे बजते हैं इसमें से स्वर कैसे निकलता है इसके बारे में भी मालूम है उसके बाद में क्रीड़ा शिक्षकों ने स्केटिंग मलखांब क्रिकेट बैडमिंटन इन खेलों को ज्ञान दिया जो छोटे बच्चे हैं उनको चित्रकला हस्तकला में बहुत सारा आनंद मिलता रहा और जब जब हमारा कैंप में पेरेंट्स आते थे पेरेंट्स भी ये समर कैंप देखते बहुत खुश हुए बहुत सारे सब्जेक्ट को हमने हाथ लगाया जैसे कि हैंड राइटिंग स्टेनलेस कुकिंग है मेहंदी है मेडिटेशन है योगा है जो प्लेनेटेरियम जो बोलते हैं हम वो प्लेनेटेरियम हमने हमारे स्कूल में उनको बुलाया और बच्चों की अंतरिक्ष यात्रा सौरमंडल के बारे में मालूमत दी ग्रह तारे के बारे में मालूमत दी इस समर कैंप के अंदर कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारी सभी ने हमको सहयोग दिया सर्जन हर एक अलग अलग स्कूल में जाके मार्गदर्शन करते थे यानी कि समर कैंप खाली खेलना कूदना ही नहीं रहा बल्कि उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ इस तरह से बच्चों का विकास होने के लिए हमने ये समर कैंप का यूज किया है और समर कैंप की वजह से अगले साल के लिए हमारे स्कूलों में बच्चों की प्रवेश संख्या बढ़ने वाली मेरे स्कूल के अंदर टॉय बैंक भी चालू किया हमने टॉय बैंक का मतलब ऐसा है बैंक के अंदर बहुत सारे खिलौने हैं जो बच्चों को जो खिलौना चाहिए जो कि परचेस करके घर पे नहीं खेल सकते वो खिलौना उठाना खेलना और जगह पे रख देना इस तरह से समाज अभी मनपा स्कूल की तरफ देखने का उनका नजरिया चेंज हो रहा है
छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम की ये पहल निश्चित ही अभिनंदनीय है परिक्रमा के लिए छत्रपति संभाजी नगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित
And now taking you all to Mizoram, where a 2-day-long education fair was held in Aizawl recently. The aim of the education fair was to bring students and educational institutions on a common platform. We have more on this from our Aizawl correspondent.
In this age when there are plethora of career opportunities and options, the need for career guidance is of paramount importance. Choosing the right career option is vital for students to take on making successful lifelong journey. Towards this objective, a two-day education fair was held in Aizawl on April 26th and 27th. The aim of the fair is to give the students opportunities to interact with the authorities of various colleges and institutions across India. More than 30 colleges and universities took part in the event. The event is a platform for young students to know about the diverse career opportunities and avenues available to them for their future pursuit. The education fair is being organized by SAPE Events and Media Private Limited. Speaking to Akashvani News, Sanjay Thapa, an organizer, said that the education fair is being organized to give students an opportunity to interact with the authorities of various colleges and institutions so that students could choose the right career. He said that the education fair gives students an opportunity to interact directly with colleges and institutions. Colleges and institutions from Delhi, Chennai, Pune, Punjab, Kolkata, Bangalore and others are putting up exhibition stalls in this education fair.
So the reason we organize this education fair is to interact student and the, you know, the colleges directly. Because what happened in a certain time when the student, they reached class 12 and they have to decide the careers, and number of times they are not able to find the right colleges and the right people. So the reason behind this organizing this exhibition is the student of Mizoram, they can able to interact directly with the colleges. If you look at the colleges, all the colleges are all reputed colleges like SRM, you have Apollo University, you have Amity, Sarda, and they all came directly from the colleges. So there's no middleman. So, and the students, you know, they can take information from the online, but certainly, you know, decision when you make in terms of the careers, you need to interact, you need to understand more. So this gives you the ideal platform for the students, you know, to able to understand, and it helps to decide their careers.
The education fair was organized by SAPE Events and Media Private Limited. For Parikrama, Irene, Akashvani, Aizawl.
And Lalveen, we all know that the campaigning is going on in full swing, and in view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on the state profile, giving details of number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts by our correspondents. And today we take you all to Belgavi Lok Sabha seat in North Karnataka, which borders Maharashtra and is going to face election on the 7th of May. Out of the 8 assembly seats there, the 3 seats are held by BJP and 5 are represented by the Congress MLAs after the assembly elections held last year. We have a report from our correspondent.
Keen contest is seen from Belagavi Lok Sabha seat as veteran politician Jagdish Shettar from BJP is taking on young candidate from Congress Mrinal Hebbalkar, the former chief minister and six-time MLA from the Dharwad Central Assembly seat. Jagdish Shettar had contested and lost as a Congress candidate last year and had recently joined BJP again. Belagavi is the stronghold of BJP. It was represented by late Suresh Angadi from 1999 to 2019. After his demise during the COVID pandemic, his wife Mangala Angadi had won the seat for BJP in the 2021 by-election. There are 13 candidates in fray and 7 of them are independents. Out of 19,23,788 voters, the number of female voters are 9,66,134, and the male voters follow with 9,57,559, and the rest are others. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
और अब मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट के बारे में जानकारी. विविधताओं से भरे गुना संसदीय क्षेत्र में मालवा का स्वाद मिलता है तो चंबल के तेवर भी. बुंदेलखंड की तहजीब है तो राजस्थान की छलक भी.
चंदेरी की साड़ियों के लिए देश भर में मशहूर गुना संसदीय क्षेत्र में आमतौर पर ग्वालियर राज परिवार का कब्जा रहा है। 2019 के चुनाव को छोड़ दें तो राजमाता विजयाराजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित सिंधिया राजघराने की तीन पीढ़ियों ने ही गुना का प्रतिनिधित्व किया है। 18,83,000 से ज्यादा मतदाताओं वाले गुना संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें से 2 पर कांग्रेस और 6 पर भाजपा विजयी रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के केपी यादव ने कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को परास्त किया था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भाजपा के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने यादवेंद्र राव देशराज सिंह को टिकट दिया है। बसपा और कुछ स्थानीय पार्टियों सहित कुल 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि इस बार भी राज परिवार का दबदबा रहता है या फिर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाती है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
And Lavlin, in the third phase of Lok Sabha elections, polling will be held on 10 seats in Uttar Pradesh. This includes the important seat of Sambhal. Congress has not won this seat for the last 40 years, while the BJP has won only once till date. This seat is dominated by the Samajwadi Party, and this time the party has fielded Ziaur Rahman Barg, grandson of late Shafiqur Rahman Barg. BJP has once again fielded 2019 runner-up Parmeshwar Lal Saini, while BSP has fielded Chaudhary Saulat Ali as its candidate. Apart from these, 9 other candidates are also trying their luck on this seat. We have more from our correspondent.
संभल लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं। इसमें संभल, चंदौसी, असमोली, कुंदरकी और बिल्लारी शामिल हैं। इस सीट पर 16,11,419 मतदाता हैं, जिसमें 8,62,139 पुरुष मतदाता, 7,49,136 महिला मतदाता और 144 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। यह मतदाता आगामी 7 मई को होने वाले मतदान में 22 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। संभल लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव 2 बार, रामगोपाल यादव 1 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार सपा ने संभल लोकसभा सीट से जियाउर रहमान बर्ग को प्रत्याशी बनाया है। वहीं भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उपविजेता रहे परमेश्वर लाल सैनी को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने चौधरी सौलत अली को अपना उम्मीदवार बनाया है। संभल लोकसभा सीट को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने में लगी हुई हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
And now we take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
Today we remember Raja Mahendra Pratap Singh. Raja Mahendra Pratap was born into the ruling family in Hathras in 1886.
In 1914, Raja Mahendra Pratap Singh left his estate to plunge into India's struggle for independence. On the 1st of December 1915, he proclaimed the first provincial government of India outside India at the Baghe Babar in Kabul. He declared himself president, and his fiery fellow revolutionary Maulana Barkatullah of Bhopal as prime minister of the provincial government.
Raja Mahendra Pratap was also deeply involved with the Swadeshi movement and would constantly promote small industries with indigenous goods and local artisans. Deeply influenced by the speeches of Dada Bhai Naroji and Bal Gangadhar Tilak, Mahendra Pratap started the movement to burn foreign-made clothes.
Pratap also visited foreign countries in an attempt to obtain support for India in its struggle for freedom. In 1929, Mahendra Pratap launched the World Federation in Berlin. He was nominated for the 1932 Nobel Peace Prize. After almost 32 years in exile, Mahendra Pratap Singh finally returned to India in 1946.
In independent India, he entered Lok Sabha from Mathura in 1957. Raja Mahendra Pratap continued to work for the society till his death on the 29th of April 1979. AIR News salutes the great nationalist Raja Mahendra Pratap Singh.
We also remember the freedom fighter Gop Bandhu Chaudhary from Odisha. Gop Bandhu Chaudhary was born in Jagat Singhpur. After his education, he joined the British government as a deputy magistrate. After 4 years, he resigned from his post of deputy magistrate and decided to spend the rest of his life in the service of the people. Gopabandhu Chowdhury started participating in the Gandhian programs.
Nijo sukho lagi jatonu hai hindu viswahit hindu pratirakta bindu.
He became a member of the Odisha Congress Committee and also a permanent member of the Utkal Sammelani. His most significant work in this phase of Gandhian struggle for Swaraj was the establishment of Alakashram in Jagat Singhpur in January 1922. He experimented with the Gandhian system of rural reconstruction and education in this ashram.
Gopabandhu became a famous leader of the civil disobedience movement and salt satyagraha. He was arrested by the British administration in April 1930 and was imprisoned till March 1931.
In 1934, Mahatma Gandhi undertook a padyatra in Odisha. Upon Gandhiji's advice, Gopabandhu set up a base at Bari with his family and a few followers on the 13th of August 1934 and started working for people there. Gopabandhu translated Mahatma Gandhi's biography, My Experiments with Truth, into Odia, Satyara Prayog.
Post-independence, Gopabandhu became associated with the famous Bhudan movement in the 1950s. He breathed his last on the 29th of April 1958 after a long and eventful career of implementing Gandhian programs in rural Odisha.
We also remember the martyr Indra Bhushan Rai, born in 1890 in district Khulna, now in Bangladesh. Indra Bhushan was a high school student when he threw a bomb on the mayor of Chandranagar in 1908. Later, he became a member of the Manikatola Garden Secret Organization and was convicted and sentenced to 10 years of imprisonment in cellular jail in 1909 for his involvement in the Alipur bomb case. Indra Bhushan was tortured so much by the British authorities that he committed suicide inside the jail on the 29th of April 1912.
And now coming to the business news of the day, benchmark indices returned to their winning ways after a one-day hiatus led by strong buying action in banks. The BSE Sensex soared 941 points to settle at 74,671, while the Nifty 50 rose 223 points or 1% to close at 22,643.
और अब खेल के मैदान की बात करें तो आईपीएल में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स खेलेगी दिल्ली कैपिटल्स से शाम 7:30 बजे से.
And coming to our last segment now of paying tributes, we start with
Kedar Sharma से शुरुआत करते हैं. भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे. बॉलीवुड में ऐसे फिल्मकार के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्होंने राज कपूर, भारत भूषण, मधुबाला, माला सिन्हा, तनुजा को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
एंड आउटस्टैंडिंग पोएट शर्मा रोट सम ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल सॉन्ग्स एंड वन ऑफ दैट इज फ्रॉम द मूवी हमारी याद आएगी इन द वॉइस ऑफ मुबारक बेगम. And another personality we pay tribute to is the Indian tabla player who specialized in Hindustani classical music and was a frequent accompanist of sitar player Pandit Ravi Shankar, and he can be credited with being responsible for introducing tabla to the Western audience. He traced his lineage to the Punjab Gharana community of musicians sharing a distinctive musical style.
जी, सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में ही तबले की ताल पर माहिर हो गए थे. पंडित रविशंकर के साथ अल्लाह रखा खान जी को तबला और निखार उनका बहुत सामने आया.
And very few people know that Allah Rakha joined All India Radio at Lahore as a staff artist in 1936 and later he was transferred to Bombay.
1977 में उनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया.
And last but not the least, we also pay tribute to Irfan Khan.
इरफान खान का हम कह सकते हैं कि उनकी पुण्यतिथि है. बहुत छोटा उनका अभिनय का समय रहा, लेकिन उसमें भी उन्होंने लोहा मनवाया और उस किरदार को वो जी लेते थे. मकबूल, हासिल, द नेम से एक रूख जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का उन्होंने लोहा मनवाया.
एंड हु कैन फॉरगेट हिज डायलॉग्स फ्रॉम हिज नेशनल अवार्ड फिल्म पान सिंह तोमर.
अब हम भाग रहे चंबल का भीड़ में, जा बात को जवाब को देखो, जब बात को जवाब को देगो.
अब मैं तो बगनवा तो है तो बग लेंगे, जय ही खेल लिखा है तो जे भी खेल ले. ओ दादा, जो जवाब देके चला जाए दादा जवाब.
और अब समय हो चला है श्रोताओं आपसे इजाजत लेने का, तो लवली निगम और अनुजा कुमार को अनुमति दीजिए परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की. नमस्कार, नमस्कार।